हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लीला अचानक नव्यांशी के सामने पहुंच गई थी और उसे एक एल्बम देखने के लिए फोर्स कर रही थी। इसी बीच वेद वहां पहुंच गया। वेद ने जब नव्यांशी और लीला को साथ में देखा तो वो नव्यांशी पर ही गुस्सा हुआ था। हालांकि बाद में नव्यांशी ने जब अपना पक्ष वेद के सामने रखा तो वो समझ भी गया था। नव्यांशी अपनी तरफ से काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज लीला की वजह से उसका और वेद का रिश्ता कमजोर पड़ने वाला था। ये नव्यांशी को बिल्कुल गवारा नहीं था। उसने तुरंत अरमान को कॉल किया और लीला के बारे में पूछने लगी। नव्यांशी भी जानना चाहती थी कि आखिर लीला को शिवांशा से समस्या क्या है, जो वो शिवांशा के इस तरह से क्यों पीछे पड़ी है कि उसकी शादी और नए रिश्तों को खराब करना चाहती है। वहीं नव्यांशी की बातों से अरमान समझ गया था कि लीला अभी भी शिवांशा को परेशान करती है और इस कोशिश में लगी रहती है कि कैसे उसकी सच्चाई चौहान फैमिली के आगे लाई जाए। अरमान को लीला की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, पर नव्यांशी के सामने सामान्य बर्ताव करने के लिए उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो नरम लहजे में बोला, नव्यांशी, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आई होप कि तुम मेरी बात पर बिलीव करोगी। लीला राजावत मेरी बड़ी मॉम जरूर है, पर मैंने उनसे ज्यादा घटिया औरत नहीं देखी है। दूसरों को तकलीफ देना और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना उनका फेवरेट काम है। हाँ, इतने दिनों में मैं ये तो समझ ही गई हूं, पर उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शिवांशा भाभी हमारे घर की बहू है। शायद वो इस वजह से नाराज है क्योंकि मनन की शादी शिवांशा भाभी से नहीं हुई, नव्यांशी बोली। उसने लीला के इस बर्ताव का वही कारण बताया था जो थोड़ी देर पहले वेद ने उसे समझाया था। अरमान के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मनन और शिवांशा की शादी हो जाती तब भी वो शिवांशा को परेशान नहीं करती? उन्होंने कभी मेरी मॉम तक को चैन से जीने नहीं दिया था। मनन की मेंटल कंडीशन खराब थी, उसके बावजूद उसे परेशान किया। राजावत फैमिली में काम करने वाले हाउस हेल्पर के साथ वो जानवरों जैसा बर्ताव करती है। उन्हें लगता है कि उनके अंडर काम करने वाले लोग उनके गुलाम हैं, जिनकी छोटी सी गलती पर वो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटती हैं, सजा देती हैं। लीला के बारे में ये सब सुनकर नव्यांशी को काफी हैरानी हुई। वो जानती थी कि लीला जैसी औरत अपने से छोटी हैसियत के लोगों को छोटा समझती है, लेकिन वो इस तरह उन्हें मारती पीटती थी ये उसे नहीं पता था। लेकिन तुम्हारे घर के बाकी लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? नव्यांशी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस घर में सब लोग वैसे ही हैं। क्या तुम अब तक नहीं समझ पाई मैं और मनन सबसे अलग दिल्ली में क्यों रहते हैं? सी, मैं तुम्हें यही समझाऊंगा, आगे से तुम उन्हें इग्नोर करना और उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। वो औरत ऐसी है कि शिवांशा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। उसका बस चले तो वो शिवांशा को टेररिस्ट घोषित कर दे या फिर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के खानदान की भी बता दे। बातों ही बातों में अरमान ने जानबूझकर दुश्मन के खानदान का नाम लिया था कि कल को लीला जाकर शिवांशा के देवराज की फैमिली का होने का सच भी बताए तो नव्यांशी उसकी बात पर यकीन न करे। हाँ, तभी वो बार बार आकर बोलती है कि हम उसका असली चेहरा नहीं जानते हैं, न जाने क्या बताने की कोशिश कर रही थी, नव्यांशी बोली। कुछ ऐसा ही बता रही होगी जिसके बाद तुम्हारे मन में शिवांशा के खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। आई होप कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है, अरमान काफी इंटेंस वॉइस में बोला। हालांकि आखिरी लाइन उसने क्यों कही थी उसे खुद समझ नहीं आया था। नव्यांशी और अरमान के बीच कोई रिश्ता नहीं था, वो दोनों तो दोस्त तक नहीं थे, पर अरमान की आखिरी लाइन से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता हो। कुछ पल के लिए नव्यांशी बिल्कुल शांत हो गई थी और कॉल पर सन्नाटा छा गया था। अरमान ने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा तो कॉल अभी भी चल रहा था। आर यू ऑल राइट नव्यांशी? अरमान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, और डोंट वरी, आगे से वो मेरे सामने भी आएगी तो मैं उनकी एक बात नहीं सुनूंगी, नव्यांशी ने जवाब दिया। उन दोनों के बीच जो भी जरूरी बात होनी थी वो हो चुकी थी, फिर भी न जाने क्यों नव्यांशी का कॉल कट करने का मन नहीं कर रहा था। इससे पहले कि अरमान कॉल कट करता, नव्यांशी ने जल्दी से पूछा, अच्छा अब मनन कैसा है? क्या अभी भी वो मुझे उस अजीब नाम से बुलाता है? और क्या अब भी तुमने मेरे नंबर उसी नाम से सेव कर रखे हैं? नहीं, मैंने तुम्हारे नंबर किसी उल्टे सीधे नाम से सेव नहीं कर रखे हैं, अरमान ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं दिल्ली आने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगे? मुझे तुम अपने घर का एड्रेस दे देना ताकि मैं पास ही के एरिया में किसी होटल में बुकिंग कर लूँ, नव्यांशी ने कहा। अगर दिल्ली आ ही रही हो और रुकना पड़ेगा तो मेरे घर में रुक जाना, मनन भी तुम्हें देखकर खुश होगा, अरमान ने जवाब दिया। वो बस कुछ भी करके नव्यांशी का ध्यान शिवांशा पर से हटाना चाहता था। कुछ देर बात करने के बाद नव्यांशी ने कॉल कट कर दिया था। अरमान से बात करके उसका मूड अच्छा हो गया था और अब उसके दिमाग में किसी तरह के सवाल भी नहीं उठ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज लीला का प्लान पूरी तरह फेल हो गया था। एक तो नव्यांशी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, ऊपर से उसके पास जो इकलौता सबूत था वो भी वेद ने उसे छीन लिया था। इतना सब ट्रॉफी नहीं था जो अंकुश इस वक्त अस्पताल में था और उसका पैर टूट गया था। बहुत मुश्किल से लीला ने अंकुश से मिलना मैनेज किया था। लीला जब अंकुश से मिलने अस्पताल पहुंची तो उसका दिल गुस्से से भर उठा था। अंकुश काफी थका हुआ लग रहा था, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और दाढ़ी भी बढ़ गई थी। वो अपनी उम्र से 5 साल बड़ा नजर आने लगा था। क्या हालत कर दी है उस वेद सिंह चौहान ने मेरे बेटे की, ये सब उस शिवांशा की वजह से हो रहा है,
मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वेद और शिवांशा, मेरे इकलौते बेटे को आज तुम लोगों ने उसकी आजादी छीनकर उसे सलाखों के पीछे कैद किया है। कल ऐसा दिन आएगा जब तुम लोग बिना जेल की सलाखों के घुटन भरी जिंदगी बिताओगे, लीला मन ही मन बोली। उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो वेद और शिवांशा की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अंकुश आंखें बंद करके प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। किसी के आने के कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोली तो सामने लीला खड़ी हुई थी। लीला को देखकर अंकुश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। राजावत खानदान कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, वो उदयपुर के नामी घरानों में आते थे। उसके ऊपर उनकी अच्छी खासी जान पहचान होने के बावजूद उस घर का इकलौता बेटा जेल में कैद था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कई बार खुद अंकुश को यकीन नहीं होता था कि वेद सिंह चौहान के आगे उसकी फैमिली इस कदर लाचार हो गई है कि वो उसे बेल तक नहीं दिलवा पा रही है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, आप लोगों को देखकर मुझे अपनी मजबूरी का एहसास ज्यादा होता है। इससे अच्छा मैं किसी गरीब का बेटा होता तो अब तक वो किसी के आगे नाक रगड़कर मुझे जेल से बाहर निकलवा लेते। अफसोस, ये पैसा, रुतबा और नाम किसी काम नहीं आ रहा, अंकुश ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। लीला अंकुश के पास आई और भारी आवाज में बोली, ये सब उस शिवांशा की वजह से हो रहा है। वो लड़की मनहूस है, तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया? ना तुम उसे जंगल में लेकर जाते और ना वेद सिंह चौहान वहां पर आता। ऊपर से तुमने मीडिया बुला ली।
हाँ, अब तो आपको मेरी ही कमियां नजर आएंगी। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से जा रहा था। उस लड़की को मैंने वेद की जान लेने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने उस वेद को सब कुछ बता दिया। मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, इल्लीगल काम भी करता हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उस फैक्ट्री में लड़कियां छुपा कर रखूंगा, अंकुश दांत पीसते हुए बोला। सब कुछ उसी का बिछाया हुआ जाल है, तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं अंकुश, मैं उसे बर्बाद, हमेशा की तरह लीला अपने गुस्से में शिवांशा को बर्बाद करने का कह रही थी। तभी अंकुश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बस कीजिए मम्मी, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें भी अब मुझे छोटी नजर आ रही हैं। वो लड़की आपके सामने आकर कांपने लगती थी और अफसोस कि आप भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर वो मुझे अकेले में मिलती तो मैं उसे हैंडल कर लेती, लेकिन हर वक्त वो वेद उसके पास होता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसका दुश्मन नहीं, उसका रक्षक बन गया है, लीला ने गुस्से में जवाब दिया। लीला की बातें सुनकर अंकुश का खून और खौल रहा था, वो गहरी सांस लेने लगा था। उसने चिढ़न भरे लहजे में कहा, अगर वेद सिंह चौहान की नज़र मेरी चीज पर पड़ गई है तो मुझे उम्र भर इन सलाखों के पीछे रहना भी मंजूर है, लेकिन उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारे इसी पागलपन के चलते वो लड़की हमारा फायदा उठाकर चली गई। अंकुश, होश में आओ, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है और दुनिया में और भी औरतें हैं। अगर कभी जेल से बाहर भी आओ तो पहला काम यही करना कि उस लड़की की जान अपने हाथों से लेना, लीला ने अंकुश को समझाते हुए कहा। अंकुश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अंकुश से थोड़ी देर बात करके और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर लीला वहां से चली गई थी। अब वो उसे और झूठे दिलासे भी नहीं दे सकती थी कि वो जल्द से जल्द उसे जेल से बाहर निकलवा देंगे। कोई भी वकील आसानी से अंकुश का केस लेने को तैयार नहीं था, और अगर कोई सामने आने की कोशिश भी करता तो प्रतीक उसे पहले ही किसी न किसी बहाने से खरीद लेता था। नव्यांशी आज अपने काम से जल्दी फ्री हो गई थी और उसने आराध्या को भी बुला लिया था। नव्यांशी और आराध्या शिवांशा को लेकर जबरदस्ती स्पा चली गई थी। वो दोनों बस उसकी ग्रूमिंग करवाना चाहती थी। शिवांशा ने बहुत इनकार किया था, पर उन दोनों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। शाम को वेद के आने से पहले ही वो तीनों लौट आई थी। जब वेद ऑफिस से घर पहुंचा और उसने अपने कमरे में कदम रखा तो शिवांशा को देखकर उसकी नजरें उसके चेहरे पर ही ठहर गई थी। शिवांशा ने कभी अपनी ग्रूमिंग या खुद को सजाने संवारने में इतना ध्यान नहीं दिया था। पिछले दो महीनों में उसने बस साड़ी ठीक से बांधना सीखा था और उसमें भी वो काफी बार अटक जाया करती थी। उसके लंबे हल्के घुंघराले बाल ज्यादातर चोटी या जूड़े में बंधे रहते थे। ज्वेलरी के नाम पर उसके कानों में छोटे से इयररिंग्स और गले में वेद का दिया हुआ चेन पेंडेंट होता था। वेद को शोर पसंद नहीं था, इसलिए हाथों में वो सिंपल से कंगन पहनकर रखती थी। उसकी पायल की आवाज से वेद को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उसने पैरों में हैवी पायल की बजाय सिंपल पतला एंकलेट चेन पहन रखा था। आज शिवांशा हमेशा से अलग लग रही थी। नव्यांशी ने उसका थोड़ा हेयर कट करवाकर बालों को स्ट्रेट करवा दिया था। खुले बाल और प्रॉपरली तरीके से बांधी गई साड़ी और साथ में ग्रूमिंग के बाद उसका चेहरा भी चमक रहा था। वेद को इस तरह खुद को देखते पाकर शिवांशा ने अपने बालों को कान के पीछे किया और नजरें नीचे कर ली थी। वो धीमी आवाज में बोली, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? शिवांशा की आवाज सुनकर वेद का ध्यान टूट गया था और वो उस पर से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा था। वेद ने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या आज तुम बाहर गई थी? हाँ, मैं नहीं जाना चाहती थी, पर आराध्या भाभी और नव्यांशी दीदी जिद करने लगी, आगे से नहीं जाऊंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन डर के मारे तेज हो गई थी। शिवांशा को यही लग रहा था कि उसके बाहर जाने पर वेद नाराज हो गया है। जब उसके नॉर्मल तरीके से बाहर जाने पर वो गुस्सा कर रहा था तो अगर उसे पता चला कि वो उसे छुपाकर किसी इवेंट में जाने की प्लानिंग कर रही है तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करने वाला था। वहीं शिवांशा को इस तरह झिझकता देखकर वेद बोला, मैंने कब कहा कि आगे से नहीं जाना है? तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, बस थोड़ा केयरफुल रहना। लीला राजावत यही कोशिश कर रही है कि वो तुम्हारा सच मेरी फैमिली के सामने ले आए। ऐसे में अकेले उसने तुम्हें कहीं बाहर देखा तो वो तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वेद जानता था कि लीला की उसके आगे एक नहीं चलती है, पर अगर आराध्या और नव्यांशी उसके सामने हो तो वो उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें सच बताने की कोशिश जरूर करेगी।
आज भी वो नव्यांशी के साथ यही करने वाली थी। नव्यांशी की नजर एल्बम पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वो उसके हाथ में था। जिस तरह से लीला रिएक्ट कर रही थी, उससे साफ था कि नव्यांशी एल्बम देखने वाली थी। ये तो वेद सही वक्त पर पहुंच गया था और उसने मामले को संभाल लिया था। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। शिवांशा ने वेद के चेहरे की तरफ देखा तो वो परेशान लग रहा था। मेरी वजह से आपको बहुत मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, है ना? शिवांशा ने बुझी आवाज में कहा। आज वेद पहले ही काफी परेशान था और थका हुआ भी था। ऊपर से शिवांशा ने फिर से वही बातें शुरू कर दी थी कि उसकी वजह से वेद बेवजह इतना सब कुछ सह रहा है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शिवांशा यही कहती कि उसे जल्द से जल्द शिवांशा को मार देना चाहिए। वेद किसी बहस या समझाने के मूड में नहीं था, इसलिए वो इरिटेट होकर बोला, हाँ हूँ मुसीबत में, तो क्या किया जा सकता है? तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का? जादू की छड़ी है जिसकी वजह से तुम सब ठीक कर दोगी, नहीं ना? तो बार बार एक ही बात को लेकर इरिटेट करना बंद करो। शिवांशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे वेद से इस तरह की जवाब की उम्मीद नहीं थी, जबकि वेद उसे वहीं पर छोड़कर बाथरूम में चला गया था। हालांकि वेद ने सब कुछ सार्कास्टिक वे में बोला था, लेकिन वो सब सुनकर शिवांशा का दिल टूट गया था और उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसे यही लग रहा था कि सच में वेद अब उससे तंग आ गया है।